नारायण 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 कृष्ण है सत्संग करते हैं साधन करते हैं उन भाई बहनों को ये सोचना चाहिए कि इतना दिन हमने साधन किया है तो क्या परिवर्तन हुआ, क्या लाभ लिया हमने। ये स्वयं एक एक भाई बहन को सोचना है, दूसरों तरफ देखना नहीं है कि इसने कितना लाभ उठाया, इसने कितना उठाया, इतना नहीं। स्वयं को देखना है कि इतने दिनों से हम सत्संग करते हैं, जब ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं तो क्या परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन का देखना क्या है तो एक बात बता, मैं ध्यान दे रहा आप लोग सुने, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है। हमारे मन सुहावनी बात भी होती है, बिन सुहाई बात भी होती है। तो ये संसार का स्वरूप है, अनुकूलता प्रतिकूलता, ठीक और बेठीक, ये संसार का स्वरूप है। ख्याल करें आप, ये हरेक को होता है, मनुष्य को, पशु को, पक्षियों को, वृक्षों को, लताब को, धूप को, हरेक होता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता, वो अनुकूलता और प्रतिकूलता आती है और जाती रहती है। नहीं, ऐसा कोई संसार में नहीं हुआ कि जिसकी अनुकूलता ही रही हो, प्रतिकूलता कभी नहीं आई। और ऐसा कोई प्राणी नहीं कि जिसकी प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता रही और अनुकूलता ना आई हो। ये दोनों आती है, ये है संसार। और गीता कहती है यही उत्तेजित सर्गो ये सांग साम्य सर्गवाना, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन्होंने संसार को जीत लिया। अर्थ क्या हुआ कि अनुकूलता प्रतिकूलता का हमारे पर असर ना पड़े। ये हुआ है कि नहीं, देखो हानि और लाभ होता रहता है, जय और पराजय होती रहती है, सुख और दुख होता रहता है। इनके होने पर पहले जैसा ही दुख होता है उसमें कुछ फर्क पड़ा, अनुकूल परिस्थिति मिले पर सुख वैसा ही होता है, कुछ फर्क पड़ा। और कुछ फर्क नहीं पड़ा है तो क्या लाभ उठाए बताओ। मान करे कोई अपमान करे, अपमान करने से दुख पहले भी होता था आज भी होता है, सम्मान करने से सुख पहले भी होता आज भी होता है, अपमान में दुख होता है। तो इसमें कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं। वास्तव में मनुष्य जन्म है वो इन दोनों से ऊंचा उठने के लिए है। जो इनसे दोनों से ऊंचा उठ गया उसने संसार पर विजय कर ली, और नहीं तो संसार से हार गया। तो हारने वाले तो सब जोड़ी है, पशु पक्षी आदि सभी, मनुष्य भी है। पर मनुष्य पना सिद्ध नहीं हुआ, मनुष्य ना तब सिद्ध हो कि जब इन अनुकूलता प्रतिकूलता के थपेड़ों से बच जाए। ये नहीं आवे ये तो होगा नहीं। संसार में रहेगा कोई भी जीवेगा, कहीं भी रहेगा, तो अनुकूलता प्रतिकूलता तो आवेगी ही। पर गीता कहती है न प्रीणश्येत प्रियम प्राप्य नोद विजेत प्राप्ति सा प्रियम, प्रिय की प्राप्ति होने पर हर्षित न हो, अप्रिय की प्राप्ति होने पर हलचल न हो, वो स्थिर बुद्धि ने संबोधो ब्रह्म विद्रेषित। तो ये दोनों सुख और दुख न दे सके, हमारे को विचलित न कर सके, ऐसी अवस्था प्राप्त करनी है। ये एक बड़ी सार बात बताई आपको, हमारे अनुकूलता प्रतिकूलता का असर ना पड़े, अर्थात हम उस बहाव में बह न जाए। इसमें कुछ फर्क पड़ा है तो उतने अंश में हमने सत्संग की है, उतने अंश में साधन हुआ है, परंतु वास्तव में सत्संग उसका नाम है कि ये असर पड़े ही नहीं, हमारे पर असर हो ही नहीं। इस असर के तीन रूप होते हैं, बहुत ज्यादा असर पड़ना, मामूली असर पड़ना और न असर पड़ना। तो पहले जैसा असर पड़ता था वैसा ही पड़ता है, और पहले जितनी देर रहता था असर उतनी देर ही रहता है, और मानो असर उतना ही पड़ता है, जोर से दबका वैसा ही आता है, कम आता है, उतनी देर रहता है, कम रहता है। दो बात, तीसरी बात बताई थी, तीसरी बात बताई थी भाई, कितनी बार आता है, इतनी बात है। मानो राग द्वेष अपने अनुकूलता प्रतिकूलता होने पर तत्काल ही हो जाता है, रोजाना कई बार होता है, कई दिनों तक नहीं आता है, कई दिनों के बाद आता है। एक तो ये, एक आता है तब जोर से आता है, कमजोर आता है, और एक ज्यादा ठहरता है, कम ठहरता है। इसी बात, कितनी बार पहले आया, अब कितनी बार आता है, और पहले जोरदार उतना ही आता है, कम आता है, और पहले ठहरता उससे कम ठहरता है, उतना ही ठहरता है। ये तीन बात, तीनों बात सुन लो भाई। मानो पहले बार बार दुख होता था, उतनी बार दुख नहीं होता है, कम वार होता है। एक बार, एक जितना जोरदार दुख होता था उतना होता है, कम होता है, ये बात। दूसरी बात, और वो जोरदार और कितनी देर ठहरता है, तो ज्यादा ठहरता था तो अब कम ठहरता है, तो उतना ही ठहरता है। सत्संग करेगा और साधन करेगा उसके, इसका फर्क पड़ेगा ही, नियम है। और नहीं फर्क पड़ा है तो अभी तक आपने ठहर कर घुल मिलकर सत्संग ठीक तरह से किया नहीं है, साधन अच्छी तरह से किया नहीं है। अगर करोगे तो ये बात तो फर्क पड़ेगी, पहले जितने घड़ी घड़ी बार बार थोड़ी थोड़ी बात में हमारे तेजी आ रही थी, उतनी तेजी नहीं आवेगी, बार बार नहीं, कभी कभी आवेगी। और जितना जोरदार भबका होता है उतना नहीं ठहरेगा, जितनी देर ठहरता उतनी देर नहीं ठहरेगा। ये तीन बातें अपने अपने स्वयं अनुभव करो, और के कहने की सुनने की बात नहीं है, स्वयं अपने में अनुभव करो। तो इतनी बार नहीं आता, सत्संग करते करते जल्दी जल्दी भबका नहीं आता। जैसे देखो काट पड़ा हो उसमें जल्दी आग नहीं लगती, और कचरा फूस पड़ा हो उसमें फूस में जल्दी लग जाती है, घास लेट में उससे भी जल्दी लगती है। तो आग तो वही हुई, पर काट पड़ा है उस पर जल्दी आग नहीं लगती, जलने वाला है वो भी, परंतु घास फूस होता है ऐसा तो उस पर जल्दी आग लग जाती है, और घास लेट पर तेल भी तेजी से आग लग जाती है। तो हमारा अंतकरण कैसा है? घासलेट की तरह है क्या? क्या फूस घास फूस की तरह है अथवा कांच की तरह है? ये सोचना है। तो ये फर्क पड़ना चाहिए। अगर आप साधन करते हो और ये फर्क नहीं पड़ा तो साधन हाथ नहीं आया है। सत्संग करते हो और ये फर्क नहीं पड़ा है तो भाई सत्संग हाथ नहीं आई है, वो हाथ नहीं लगी है सत्संग। अपने ऊपर कितना असर पड़ता है इसको देखो आप, और भगवान पर आस्तिकता कैसी है, पहली है जैसी है कि नहीं? भगवान नाम पर रुचि पहले थी वैसी है, वो कम है वैसी है, ज्यादा हुई है? इन बातों को देखो आप, हमारा साधन, हमारा जीवन सुधरा है कि नहीं, हमारे पर असर पड़ा है कि नहीं? अगर असर पड़ा है तो सत्संग हमने किया है, और सत्संग किया और असर नहीं पड़ा तो सत्संग भीतर बैठी नहीं है, साधन भीतर से ठीक हुआ नहीं है। अगर ठीक हुआ तो ये कसौटी आनी चाहिए। गीता में योग बताया, योग। अब एक बात बता दें, ध्यान देकर सुने आप लोग, पातंजलि योग दर्शन में तो योग नाम है चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, मन लग जाए, और इस बात का बहुत प्रचार है हमारे लोगों में कि मन लगा कि नहीं लगा, मन लगा नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ, और मन लगेगा ठीक है इस कसौटी में तो पास जल्दी होंगे नहीं, ये जल्दी पास होने की कसौटी नहीं है, चित्त तो लगेगा अभ्यास करने वाले का, और वो भी अच्छा अभ्यास करने वालों का नहीं लगता है महीनों तक वर्षों तक, तो ये कसौटी इतनी तेजी की नहीं है, बढ़िया नहीं है। कसौटी ये है कि हमारे पर असर ज्यादा पड़ता है कम पड़ता है, ये कसौटी जो पहले मैंने कही ये जरूर होगी। तो गीता के योग की कसौटी क्या है कि समत्वम योग उच्यते, समता रहे, राग द्वेष हरकर शोक न हो। ये राग द्वेष हरकर शोक अगर ज्यादा होता है वैसे ही रहते हैं तो भैया फर्क नहीं पड़ा, ये अपने सोचने की, स्वयं सोचने की बात है। शोक होता है चीज कोई खो जाती है तो उसकी चिंता पहले होती थी वैसे ही होती है कि कम होती है? जोरदार होती है, कमजोर होती है, ज्यादा ठहरती है कम ठहरती है, कि कम वार होती है ज्यादा वार होती है? तीन बात आपको बताई, ये अपने अपने को सोचना है, भाइयों को बहनों को स्वयं। अगर सत्संग करने से साधन करने से इतनी बार वो भबका नहीं आता है, कम आता है, तो हमारे दवाई लागू पड़ी है, और ज्यादा ठहरते थे अब वो बात कम ठहरती है, शोक चिंता कम होते हैं, गुस्सा कम होता है, तो सत्संग का असर पड़ा है। और पहले ज्यादा ठहरती थी अब वो बात कम ठहरती है तो सत्संग का असर पड़ा है। परंतु सर्वथा ही मिटना चाहिए, न प्रदेशित प्रेम प्राप्य, वीतराग भय क्रोधा, विगत इच्छा भय क्रोधो। गीता में इसका अभाव होता है, समत्वम योग उच्यते, गीता का ये योग है। वृत्तियां आपकी लगती है नहीं लगती है? लगती है उतनी अच्छी है, परंतु आप वेदांत पढ़ते हैं, भजन ध्यान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, और ये पढ़ने पर सुनने पर अभ्यास करने पर शोक चिंता वैसा ही होता है, फर्क पड़ता है। इसमें अपने को खुद को देखना है, औरों को नहीं देखना है, औरों से गवाह नहीं रहना है, किंतु अपने आप को देखना है कि फर्क पड़ता है कि नहीं। अरे फर्क पड़ा है तो सत्संग साधन कुछ हुआ है। और पहले जैसे ही भभका आता है उतनी देर ही ठहरता है और इतनी वारी आ जाता है तो भैया सत्संग का असर नहीं पड़ा, ये बात है। अब ये असर कैसे पड़े और कैसे नहीं पड़े, तो ये जितनी जितनी संसार में आसक्ति ज्यादा होगी उतना असर ज्यादा ही पड़ेगा। भोगों में ज्यादा जितनी रुचि होगी अधिक, उतना ही असर ज्यादा पड़ेगा। अनुकूलता की चाहना अधिक होगी उतना ही अधिक असर पड़ेगा, और ये चाहना कम होगी तो असर कम होगा। आज मेरे मन में आया भाई क्या सुनावे, तो आई भी शरणागति की बात सुनाओ, ये मन में आई। परंतु फिर विचार आया कि शरणागति का अधिकारी कौन होता है, वो आते ही फिर शरणागति की बात कहने के लिए मन कम हो गया। भगवान के शरण हो जाओ तो शरण होना ठीक था तो ठीक है, परंतु शरण होने का अधिकारी वही है जो अपनी शक्ति का अभिमान न हो। हम अपने बल से अपनी शक्ति से हमारा उद्धार कर लेंगे, कल्याण कर लेंगे, ये जब तक भाव रहता है वो शरण नहीं हो सकता। ये भाव रहता है, जैसे कर्म भोगों में आसक्ति रहने पर समता नहीं आती, ऐसे ही अपने बल का अभिमान रहते हुए शरणागति नहीं आती। और एक साथ दूसरी बात चाहिए, हम चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति परंतु प्राप्ति के योग्य हम हुए नहीं, हम कर नहीं सके और निराश हुए नहीं, हमारी शक्ति का तो भरोसा रहा नहीं, परंतु परमात्मा प्राप्ति की आशा है वो भंग नहीं हुई, वो ज्यादा है मन में पर हम कर नहीं सकते, क्या करें। तो इस दुख से वो शरण होता है, अथवा अपने बल का अभिमान न रहने से शरण होता है। बुद्धि विकुंठता नाथ समाप्ता मम युक्तया, मेरी बुद्धि कुंठित होगी, मेरी शक्ति काम नहीं करती, और चाहते हैं कल्याण, कल्याण की चाहना नहीं होगी तो भी कुछ नहीं होगा। चाहना तो कल्याण की हो और हमारा उपाय काम न दे, तब एक व्याकुलता होती है, एक घबराहट होती है, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कैसे करूं, ऐसी एक व्याकुलता होती है। वो व्याकुलता जोरदार बढ़ जाएगी तो आप अधिकारी हो जाएंगे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, किसी न किसी योग के अधिकारी वो ही जाएंगे। अरे जब तक परवाह ही नहीं है, राग द्वेष हो गए तो परवाह नहीं, नहीं हो गए तो परवाह नहीं, कल्याण हुआ तो परवाह नहीं, नहीं तो नहीं होगा काम। शरणागति का अधिकारी वो ही होता है, हमारे बल का हमारे में हिम्मत ना, बल का भरोसा ना रहे, हम अपने बल से काम कर लेंगे, हम अपनी युक्ति से कर लेंगे, साधन करके कर लेंगे, ये अभिमान जब तक रहेगा वो भी शरणागत नहीं होगा। अभिमान तो रहने कल्याण की इच्छा मिटे नहीं, वो तो करनी है, अरे मैं कर सकता नहीं। जैसे डाकू आ जाए लूटने लगे, हमारा बल नहीं लगता तब वो दूसरे को पुकारता है, ये एक नियम है। कुत्ते में भी आप होती हो तो चिल्लाता जोर से, वो चिल्ला गई, तो ऐसे हम बचना तो चाहते हैं बच सके नहीं तो फिर भगवान को पुकारोगे, ऐसा प्राणी भगवान का अधिकारी हो जाता है, शरणागति का अधिकारी हो जाता है। तो शरणागति से काम बहुत जल्दी बनता है, वहां अपनी शक्ति नहीं भगवान की शक्ति काम करती है, पर वो काम करती है तब जब अपनी शक्ति का हमारे खुद को भरोसा न रहे, तो भगवान की शक्ति आती है। ये माताएं है ना, इनके सामने बालक बैठा भोजन करने को, कि माँ दे दे थोड़ा दे दिया, कहते और दे दे थोड़ा दे दिया, कहते और दे दे थोड़ा दे दिया, कहते और दे दे, अरे ये तो खा ले पहले, जितना दिया वो तो खेल में लग गया, बस मांगने लग गया, माँ देने लगी, खेल में लग गया, जितना दिया वो खा ले फिर और ले ले, खा तो सकेगा नहीं, माँ कहते क्यों जूठन करे, वो खा ले, बस दे। ऐसे आपके सामने जितने साधन आए हैं वो कर लिए तब तो और नया बताऊं, ये क्या बताऊं। तो जितना आया जितना मिला वो आपने पचाया नहीं अभी। इसका अर्थ ये नहीं है सत्संग की पूरी अपनी ताकत आ गई, ऐसा नहीं कहता मैं, परंतु शुरू तो होना चाहिए कुछ। हर शोक राग द्वेष ये कम होने चाहिए ना, नहीं होते हैं तो मेरे को कहना कि आप पूछो फिर, परंतु आपकी बेपरवाही कौन पूछे, परवाही कौन, चाहे राग द्वेष हो चाहे मत हो, दुख हो चाहे न हो, ज्यादा हो चाहे कम हो, बार बार हो चाहे कभी हो कभी न हो, ज्यादा देर ठहरे चाहे कम देर ठहरे, आप परवाह ही नहीं करते तो कैसे होगा। क्या जैसी महाराज कृपा करो आप इस तरफ ध्यान दो। सत्संग करते हैं, साधन करते हैं, भजन करते हैं और हमारे परिवर्तन न हो। सत्संग से बहुत जल्दी परिवर्तन होता है, इस वास्ते मेरे तो सत्संग करने के लिए बहुत भाव रहता है, सुनने का रहता है और सुनाने का रहता है। सुनाने से बड़ा असर पड़ता है, सुनाने से लाभ होता है और सुनने से भी लाभ होता है, मेरी देखी हुई बात है। जैसे भगवान ने कहा शंकर ने कि निज अनुभव अब कहूं, कैसे काकभूषण जी ने कहा गरुड़ जी ने, तो काकभूषण जी कहा निज अनुभव अब कहूं खगेशा, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि बिना हरि भजन मिले कलेश, बिना भगवान के बिना क्लेश नहीं मिटते। तो क्लेश मिटाना है, दुख मिटाना है, हलचल मिटाना है, संताप रहेगी वो मिटाना है, ये मिटाना है, दूर करना ही है। अगर वैसे ही रहा तो मनुष्य में पशु पक्षियों में क्या फर्क हुआ, सत्संग करने वाले न करने वाले में क्या फर्क हुआ, साधन करने वाले न करने वाले में क्या फर्क हुआ। ये खूब बात सोचने की है, समझने की है। तो शरण तब होगा कि जब अपनी शक्ति कोई काम नहीं करती और वो नहीं कर सकते, इनको बार बार दुख पाते, अपनी शक्ति से नहीं होता, तो अपनी शक्ति का भरोसा मिटने से फिर भगवान को पुकारेगा और उसका काम होगा ही नियम से, ये टल नहीं सकता। कहीं है अभिमान तो शरण नहीं हुए, अगर शरण होता है तो अभिमान रहता नहीं, और पुकारता ही है भगवान को, उसका काम सिद्ध होता है इसमें संदेह नहीं है, प्रार्थना करे वो सिद्ध होती है जरूर। एक दूसरी बात और बताना, साधक असली होता है वो थोड़े में संतोष नहीं करता, जैसे लोभी आदमी धन मिलने पर संतोष नहीं करता, लाख हो जाए, दस लाख हो जाए, करोड़ हो जाए तो भी संतोष नहीं, और हो जाए और हो जाए, तो वो तो है पतन का रास्ता। और पारमार्थिक लाभ हो जाए तो उससे संतोष न हो असंतोष हो, क्या हुआ इतना थोड़ा मन लग गया तो क्या हुआ, थोड़े से काम क्रोध कम हो गए तो क्या हुआ। हमें वो सुख मिलना चाहिए जिसमें दुख न होता हो, जिसके साथ में दुख होता है वो सुख हमें नहीं चाहिए। ये अगर जोरदार आपकी वृत्ति हो जाए तो बहुत बड़ी उन्नति होगी। मामूली सुख हमें नहीं लेना है भाई, जिस सुख में दुख होता है वो सुख नहीं लेना है हमें, तो सुख वो लेना है कि जिसमें दुख ना हो। संसार का सुख है पहले दुख हो फिर सुख और फिर दुख होगा, होगा ही नियम है। सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा, अगर आप दुख भोगना नहीं चाहते हैं तो संसार का सुख मत भोगो। जो संसार का सुख नहीं भोगता उसको संसार का दुख भोगना नहीं पड़ता। अब वो सुगमता से कैसे मिटे, सुगमता से दूसरों को सुखी कैसे करें, दूसरे का दुख आपको असह्य हो जाएगा तो आपका दुख मिट जाएगा। दूसरों के दुख से दुखी होता है उसका खुद का दुख मिट जाता है, दूसरों के सुख से सुखी हो जाता है उसके सुख की इच्छा मिट जाती है, तृप्ति हो जाती है। अगर अपने सुख से सुखी और अपने दुख से दुखी होता है तब तक भाई रास्ता कटता नहीं। तो दूसरों के दुख से दुखी होने वाले का दुख मिटता है और दूसरों के सुख से सुख होने वाले को सुख की इच्छा नहीं रहती है। ये दोनों ही बात है। इस बात संतों के लक्षणों में पर दुख सुख 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 देखे पर सुख सुख और दुख दुख देखे पर। दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं, दूसरों के सुख से सुखी हो जाते हैं। ये संतों के लक्षण बताए। उसके दुख होता है दूसरों को दुख देख देख के। तो दूसरों का दुख कैसे मिटे, ये अगर लग लग जाएगी लाए तो ऊंचा उठ जाएगा। और मेरी शक्ति काम नहीं देती अब क्या करूं, तो ऊंचा उठ जाएगा, भक्ति में चला जाएगा। और इसमें ऊंचा उठ जाएगा, योग में चला जाएगा। और विकार अपना भीतर में आता है और वो विकार राग द्वेष हर्ष शोक चिंता भय उद्वेग विकार है। ये निर्विकार नहीं हुआ तो निर्विकार विकार चाहता वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी होता है। विकार नहीं होना चाहते, ज्ञान मार्ग पोथी का अधिकारी नहीं होता। पोथी पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है अपने में निर्विकारता की इच्छा है कि निर्विकार जीवन होना चाहिए जिसमें कोई संयोग हो वियोग हो हमारे विकार न हो। तो निर्विकार से आता है अपने आप को बनाना, तब तो ज्ञान मार्ग है। और हरक शोक नहीं मिटाना चाहता है, हमारे शक्ति से नहीं मिटा, भक्ति योग का अधिकारी हो जाएगा। और दूसरे के सुखी दुखी होता है तो वो सुख दुख उन्हें कर्मयोग का अधिकारी, दूसरे के सुख में दूसरे सुख दुख में दुखी होता है। ये जब तक नहीं होगा तब तक ऊंचा नहीं उठेगा। मेरी प्रार्थना है कि आप ऊंचे उठे। सत्संग से जरूर लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है। लड़ाई झगड़ा मिट जाता है, आपस में विरोध मिट जाता है, शांति आ जाती है, सुधार हो जाता है। ये सत्संग से जरूर होता ही है, नियम है। अगर नहीं होता है तो सत्संग मिला नहीं है, मिला है तो आपने किया नहीं है। ये बात अब इस बात पूछो, कोई प्रश्न आप पूछो, कोई प्रश्न हो तो पूछो भाई। नजीक आओ, नजीक हो जाओ, जो किसी के हो सका तो पूछो। फालतू बात नहीं करनी, फालतू बात नहीं करनी। खास भीतर में कोई अटकती हो बात तो वो बोलो।
संता में और अंतकरण की स्थिति बराबर होने में क्या अंतर है?
वो अंतकरण का निरोध होना है ना, वृत्तियों का निरोध होना और समता दो चीज है। तो आज लोग विशेष करके मन नहीं लगा नहीं रुका तो क्या हुआ, ये ऊंची चीज नहीं है। ऊंची चीज है विरुद्ध बात मिलने पर मन में हलचल न हो, असर न हो। पर मत सहिष्णुता, परोत्कर्ष सहिष्णुता, द्वंद सहिष्णुता, वेग सहिष्णुता, ये चार सहना चाहिए। दूसरे का मत भी नहीं सहा जाता हमारे से तो कैसे हुआ, वो समता कैसे आएगी? तो समता है, ये योग है गीता जी का। खुनो ध्यान दे तो सुन लो, राग द्वेष हरक शोक ये नहीं आवे, गीता का योग सिद्ध हो गया। अरे ये आते तो योग सिद्ध नहीं हुआ। चित्त एकाग्र भी आपने कर लिया सब तरह, बट व्यवहार में हरक योग होता है तो वो काम नहीं हुआ। और हरक शोक ये कम मिट गए, कम हो गया, मिट गया है, काम हो गया, चाहे चित्त आपका लगे चाहे न लगे। ये बात तो नहीं हो हमारे से तो भगवान को पुकारो और दूजा भगवान के नाम का जप करो। ध्यान देना, साधन बताना, भगवान के नाम का जप करो और प्रार्थना करो मन ही मन से कि हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं भूलूं नहीं, और नाम जप करते रहो, रात दिन हरदम चलते फिरते उठते ख्याल रखो कि नाम जप छूटे नहीं, और कहो हे नाथ मैं भूलू नहीं, परमात्मा से यही प्रार्थना करो, ये साधन आप करो, बहुत सीख है, बहुत सीधा सरल साधन है और बहुत लाभ होगा। नारायण 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 नारायण
राम। यह प्रवचन परम सिद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भादवा शुद्धि द्वादशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 2 सितंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद भीना सद्वारा पर हुआ। राम।